नमस्कार मित्रों, कितनी ही बार आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि किसी डिपार्टमेंट में जब आपकी फाइल या आपका केस आगे बढ़ता है तो नीचे से लेकर ऊपर तक सबको खुश रखना पड़ता है। नीचे वाला खुश नहीं हुआ तो फाइल आगे नहीं जाएगी, और ऊपर वाला बॉस गुस्सा हो गया तो फाइल अप्रूव ही नहीं होगी। क्या आप जानते हैं कि ऐसी ही एक समस्या श्री कृष्ण को भी आई थी जब वो वृंदावन में थे? तो आइए जानते हैं क्या किया कृष्ण ने। क्या उन्होंने ऊपर वाले बॉस को रिश्वत दी थी? जानते हैं भागवत पुराण की इस कथा के द्वारा। मैं शैलेंद्र भारती आपका इस कथा में स्वागत करता हूं और आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि जरा ध्यान देकर के इसे सुनिएगा। दोस्तों, वृंदावन में सब प्रसन्नतापूर्वक रहते थे। उस समय से आज तक हमारे ग्रामीण इलाकों में आजीविका का सबसे बड़ा साधन पशुधन ही रहा है। पशु के बिना खेती भी संभव नहीं, और पशु हो, खेती हो या मनुष्य, हम सबको, इस पूरी सृष्टि को जीवित रखती है बारिश। उसी के होने से जीवन चलता है। यदि आकाश से जल न गिरे तो सब खत्म हो जाएगा। तो हुआ यूं कि जब बारिश से पहले का समय आया तो सभी गोप इंद्र यज्ञ की तैयारी करने लगे। कृष्ण ने जब पूछा कि इंद्र के लिए ये यज्ञ क्यों कर रहे हैं, तो नंद बाबा बोले, अरे इंद्र के कारण ही तो हमें पहले जल मिलता है और फिर अन्न। यदि इंद्र क्रोध में आ गए तो या तो बाढ़ आ जाएगी या सूखा पड़ जाएगा। कृष्ण जी को यह बात कुछ जची नहीं। वे बोले, हमारे जीवन का आधार गोवर्धन पर्वत है और गोधन है, यानी कि गैया, तो उनकी तो पूजा होनी ही चाहिए। कृष्ण ने अपने पिताजी से कहा कि हमारे कर्म अच्छे होने चाहिए। कर्म की गति देह त्यागने के बाद भी हमारी आत्मा के साथ रहती है, इसलिए जो प्रत्यक्ष हमें जीवन दे रहा है, जैसे कि गोवर्धन और गौ माता, उसकी उपेक्षा करना तो अनुचित होगा। कृष्ण की इस गूढ़ बात का नंद बाबा के पास कोई उत्तर नहीं था। उसके बाद कृष्ण बोले कि इंद्र यज्ञ के लिए जो भी सामग्री हम सब ने जुटाई है उससे गोवर्धन और गायों की पूजा करते हैं। कृष्ण की इस बात को सब लोग मान गए और फिर गोवर्धन पर्वत की पूजा प्रारंभ हुई। 56 भोग और 36 व्यंजन का उनको भोग भी लगाया गया। अब तक तो वैसे सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, परंतु जो किया था उसे भुगतने की बारी अब थी। इंद्र को पता चला कि ब्रजवासियों ने उसकी पूजा न करके एक पर्वत की पूजा आरंभ कर दी है। इंद्र अहंकारी था, उसने उसी समय ब्रज के ऊपर मूसलाधार वर्षा शुरू कर दी। बादलों की भयंकर गड़गड़ाहट के साथ मूसलाधार बारिश गिरने लगी और साथ में भयंकर आंधी तूफान भी चलने लगे। इस तरह की बारिश से तो सबको बचना ही था, पर कहां जाते, हर ओर तो बारिश गिर रही थी। आंधी तूफान में कहीं जाना भी संभव नहीं हो रहा था। तब कृष्ण बोले, हमने गोवर्धन जी की पूजा स्तुति की थी, चलो उनकी शरण में ही चलते हैं, वे अवश्य हमारी रक्षा करेंगे। पूरा ब्रज गोवर्धन पर्वत के पास जमा हो गया, परंतु वर्षा तो ऊपर से गिर रही थी, उससे बचना था। तब श्री कृष्ण ने अपने बाएं हाथ की छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और सारे के सारे ब्रिजवासी उसके नीचे आ गए। इंद्र के आदेश पर 7 दिनों तक मेघ भयंकर नाद के साथ बारिश करते रहे और 7 ही दिनों तक सारे ब्रिजवासियों को कृष्ण ने सुरक्षित रखा। उन्होंने उन पूरे 7ों दिन तक अपनी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठाए रखा। इंद्र ने देखा कि 7 दिनों के प्रकोप के बाद भी ब्रिजवासियों का बाल भी बांका न हुआ। इंद्र का अभिमान टूट चुका था और वो कृष्ण की महिमा को जान चुका था। 7 दिनों के बाद जब धूप निकली तो सारे ब्रिजवासी गोवर्धन की शरण से बाहर आए। सबके बाहर निकल जाने के बाद कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को वापस उसी स्थान पर रख दिया। इसी गोवर्धन पर्वत से जुड़ी एक और कथा भी मिलती है दोस्तों। जब राम लंका जाने के लिए सेतु बना रहे थे तब हनुमान इसी गोवर्धन को उठाकर ला रहे थे सेतु बनाने के लिए। पर तभी आकाशवाणी हुई कि सेतु बनाने का काम पूरा हो चुका था, अब गोवर्धन का कोई प्रयोजन नहीं रह गया। तब हनुमान जी ने उस पर्वत को नीचे रख दिया। इस बात से गोवर्धन बहुत दुखी हो गया कि वो प्रभु के काम में सहायक नहीं बन सका। गोवर्धन चाहता था कि प्रभु राम उस पर अपने चरण रखें और उसे धन्य करें। हनुमान जी ने यह दुखड़ा राम जी को बताया। राम बोले कि इसमें गोवर्धन की कोई गलती नहीं, जब मैं कृष्ण अवतार लूंगा तब मैं स्वयं गोवर्धन की पूजा करूंगा। और इस तरह से कई जन्मों के बाद गोवर्धन को प्रभु का साथ देने का फिर से अवसर मिला। दोस्तों, हमारी कथा की विषय वस्तु थी कि कई लोग जो पावरफुल पोजीशन में होते हैं वो अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर सकते हैं, जैसा कि इस कथा में इंद्र ने किया। अब या तो उनकी बात मान करके आप हमेशा उन्हें खुश करने में लगे रह सकते हैं, और या फिर कृष्ण की तरह अपने आप पर भरोसा रखकर ऐसे झूठे अभिमान को तोड़ने का भी प्रयास कर सकते हैं। आप सोच सकते हैं कि वो तो भगवान थे तो उन्होंने ऐसा कर दिया, पर उन्होंने ऐसा अकेले नहीं किया था। उनकी बात को समझकर पहले तो नंद बाबा तैयार हुए, उसके बाद पूरे ब्रज ने उनका साथ दिया। यदि कोई अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल कर रहा है और उसके सामने सब के सब खड़े हो जाएं, तो उसकी शक्ति अपने आप कम हो जाती है, उसे अपनी हार माननी ही पड़ती है। दोस्तों, एक अकेली के लिए हो सकता है कि ऐसा करना संभव न हो, परंतु जब समूह में साथ में आते हैं और सही काम को करने की कोशिश करते हैं तो फिर शक्तिशाली को समझ में आ जाता है कि असली शक्ति सबकी भलाई के लिए होती है, ना कि अपनी झूठी बढ़ाई के लिए। तो दोस्तों, इस कहानी से जो हमें सीख मिलती है वो आपके जीवन को सुचारू ढंग से चलाए, इसी प्रार्थना के साथ मैं शैलेंद्र भारती आपसे आज्ञा लेता हूं। धन्यवाद।